पहली चीज़ तो ये है कि, और मैं बहुत अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, कि इस रोमानवियत से निकल जाइए कि हमें किसी मसीहा की ज़रूरत है। हमें किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्त और फाजिल मौलाना मार खान नासिर साहब ने परसों चंद सतरें लिखी इस पर, और मेरे ख़्याल में बहुत दाद देनी चाहिए। यही उन्होंने बयान किया कि हमें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो ज़्यादा नहीं थोड़े से शरीफ हों, ज़्यादा नहीं थोड़े से दयानतदार हों, ज़्यादा नहीं थोड़े से हमदर्द हों। यानी इस पे इक्तफा कीजिए। हम जो ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, ये बिलमूम ताबीर के लिहाज से ख्वाब परेशान हो जाते हैं। तो मसीहाओं को तलाश करने की बजाय सियासत में ख़ास तौर पर हमेशा इस पर तवज्जो मुर्तकिज रखें कि दुनिया की तारीख इस बात की गवाही देती है कि सियासी नतायज अच्छे किसी मसीहा से नहीं निकलते, वो हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से निकलते हैं। यानी आला और अच्छे सियासी नतायज ये ना नारों से निकलते हैं, ना अच्छे प्रोग्रामों को बयान करने से निकलते हैं, ना जज्बात की हैजान खेजी से निकलते हैं, ये सिर्फ़ सियासी इस्तेहकाम से निकलते हैं। और ये दुनिया का तजुर्बा है, जैसे ही इस्तेहकाम पैदा कर देते हैं आप, तो कोई सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। तो मईशत और सियासत ये अपनी ज़ात में वाकई ऐसे हुए हैं कि समाज के ऊपर इनके असरात सिर्फ इस्तेहकाम से नुमाया होते हैं, वरना ये ख़ुद इंतशार का ज़रिया बन जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि लोग बेमानी किस्म के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि ये तो कमाल हो गया। आप देखें पीछे मुड़ के कि मैंने कभी सियासी मामलात में इस तरह तबसरा तो नहीं किया, वो मेरा मनसब नहीं है, मैं पसंद भी नहीं करता। लोगों को हक है वो जिससे चाहे, लेकिन उसूली चीज़ों को मैंने मौजू बनाया वो सब मौजूद है। एहतसाब का नारा लगाया गया तो आज से बरसों पहले मैंने ये कहा कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ इस मुल्क को बर्बाद कर देने वाली नहीं हो सकती। खुदा के लिए ये नारे बंद कर दें। इसलिए कि एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मामूल के हालात में। जब एहतसाब को नारा बनाया जाएगा, लाजमी नतीजे के तौर पर इंतकाम में बदल जाएगा। तो ये आप सुन लें, 5-7 साल पहले की सारी गुफ्तगू। हमारे मुल्क के बारे में ये बात भी समझ लेनी चाहिए। यानी पहली जो चीज़ थी वो तो ये थी कि रोमानवियत से निकल के आप ज़्यादा कोशिश इस बात की करें कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। जो निज़ाम भी आपने बनाना है तय कर लें और फिर उसको चलने दें। उस निज़ाम में वो मलूकियत भी हो तो अपने आप को दुरुस्त करने के कुछ कुदरती अवामिल होते हैं जो काम करना शुरू कर देते हैं। हम उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, पहले दिन से जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ है ना मुल्क में, यानी ये कुदरत ने तो नहीं बनाया हुआ था पहले से, तो ये पैदा हुआ है दो पैदाइशी बीमारियां लेकर। और आप जानते हैं कि बाद में आने वाली बीमारियों के असबाब वजू आसानी से दूर किए जा सकते हैं, पैदाइशी बीमारियों का इलाज आसान नहीं होता। ये दो पैदाइशी बीमारियाँ ले कर पैदा हुआ है, एक मज़हबी और कौमी रियासत की कशमकश, दूसरे सिविल और मिलिट्री इकतदार की कशमकश। ये इसकी पैदाइशी बीमारियां हैं। हम सबको शऊर के साथ इनका इलाज करना चाहिए, और ये इलाज गाली देने से नहीं होगा। इसके लिए भी आपको एक बड़े पैमाने पर नैरेटिव वजूद में लाना है, सब्र के साथ वजूद में लाना चाहिए। ये मैं ख्वाहिश करूँ, आप ख्वाहिश करें, दो दिन में नहीं हो जाएगा। ये अमराज हैं जो अंदर उतर चुके हुए हैं, इनको एक तरफ से छेड़ें तो बिल्कुल कैंसर की तरह, सरतान की तरह दूसरी तरफ से निकल आते हैं। तो इसलिए इसका इदराक करने के बाद इनको हदफ बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ ये बात वाज़े हो कि पाकिस्तान कोई मज़हबी रियासत नहीं थी, ना ये मज़हबी रियासत के तौर पर बनाया गया था। ये एक कौमी रियासत है, ये मुसलमानों का नेशन स्टेट है। और अगर ये कौमी रियासत है तो फिर कौमी रियासत के उसूलों ही पर इसको देखा जाएगा। और मज़हब क्या तकाज़े करता है वो मैंने इस बाब में बहुत बयान कर दिए हैं, इस वक्त उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं। تاہم اس کشمکش کو واضح ہونا چاہیے. یہی صورتحال دوسرے مسئلے کی, یعنی حکومت یہاں کس نے کر رہی ہے. اور حکومت کے بارے میں عرض کر دوں کہ مجھے اگر ایک ملٹری گورنمنٹ میں اور ایک ملوکیت میں انتخاب کرنا, آپ جانتے ہیں کہ میں جمہوریت کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں, تو میں ملوکیت کا انتخاب کر لوں, اس لیے کہ وہ پھر ایک نظم ہے. سب سے بدترین حکومتیں دنیا میں جو قائم ہوئی ہیں وہ فوجی حکومتیں. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کے ملک کی پوری تاریخ میں چار بڑے اقدامات کیے گئے ہیں جو اپنے نتائج کے لحاذ سے سالوں پر محیط ہوئے ہیں. ذرا چاروں کا جائزہ لے کے دیکھیں کنہوں نے کیے اور قوم کو کیا بھگتنا پڑا. مجیب الرحمان کی تحریک کے مقابلے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ کنہوں نے اختیار کی. اگرتلہ سازش کیس سے لے کر بعد کے حالات میں کیا اقدامات ہوئے, کس پس منظر میں انتخابات کرائے گئے, انتقال اقتدار میں کیا مسائل پیدا کیے گئے, نتیجہ کیا نکلا. یعنی وہ ہماری تاریخ کا ایک بھیانک خواب بن گیا نا. کسی ملک کا ٹوٹنا آسان تو نہیں ہوتا. دوسرا دیکھیے اس کے بعد الطاف حسین کی پیدائش کیسے ہوئی, کنہوں نے کی, وہ سب کچھ کیسے وجود میں آیا, ایک مہاجر تحریک کس طریقے سے ایک ملٹنٹ تحریک میں بدلی, اور اس کے بعد پاکستان کی وہ شارگ جو آپ نے حاصل کرنی ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن کراچی تو یقیناً شارگ تھی. اس کو کس کس جگہ سے ہم نے زخم زخم کیا ہے اور وہ شہر کس انجام کو پہنچا. آپ جانتے ہیں انتخاب کن کا تھا, آپ جانتے ہیں مقاصد کیا تھے, آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ نتائج کتنی دیر تک بھگتے گئے ہیں, اور ان نتائج کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑے. تیسرا اقدام وہ تھا جس میں افغانستان میں ہم نے ایک پالیسی بنائی, اس کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہوئی, اس کے نتیجے میں جو مذہبی عناصر ایک افریق بنتے چلے گئے, پھر اس کے بعد ہماری گلیوں میں خون بہا, مسجدوں میں خون بہا, ہمارے علماء مارے گئے اس کے نتیجے میں. کون ہے کہ جو اس کی زد سے بچا ہے؟ یعنی خود ہمارے ہاں ہم لوگ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا, یہاں تک کہ ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کو ہمیں کس جوانی میں دفن کرنا پڑا, مجھے کس طرح ملک چھوڑنا پڑا. ابھی تک میرے جو رسالے کے ایڈیٹر ہیں جن کے منہ میں اسی کے باہر گولی ماری گئی تھی, آپ دیکھیے کہ وہ اس کے نتائج کیا بھگت رہے ہیں ابھی تک. تو یہ سب ہوا, یہ تو چند مثالیں ہیں اس کی. اس کے بعد جو آخری نتیجہ آپ نے نکالا ہے, یعنی کمال رافت و رحمت کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے آپ نے سرحد کے اوپر ایک غیر جمہوری حکومت قائم کر دی ہے مذہبی بنیاد پر, جس سے یہاں کے مذہبی عناصر مسلسل الہام حاصل کریں گے. تو اس کے بعد یا تو آپ بھی الحمدللہ یہ کہیں اور یہاں پر امیر المومنین کا اعلان کریں تاکہ قضیہ ختم ہو, ورنہ اس کے مقابل میں ادھر ایران کی پاپائیت اور ادھر یہ, وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو آئندہ آنے والے انتشار اور خلفشار سے روکے گی؟ یہ جو اقدام تھا 35 سال پر اس کے کم و بیش نتائج پھیلے ہوئے ہیں, گن کے دیکھ لیں اور کتنے غیر معمولی اور بھیانک ہیں. آخری پھر انتخاب تھا مسیحا کا, اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا.